server555.com audio production The Hound of the Baskervilles by Sir Arthur Conan Doyle Part 3 मैंने अगली रिपोर्ट में शर्लक होम्स को बताया कि हालात नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। कुछ बातें साफ नजर आ रही हैं मगर पेचीदा भी। आप फैसला करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं नाश्ते से पहले वहां गया जिस कमरे की खिड़की से बैरीमोर रात को झांक रहा था। उस खिड़की की यह खसूसियत थी कि वहां से बेआबाद ज़मीनें सबसे साफ नजर आती थीं, तो बैरीमोर ज़रूर किसी को देखने की कोशिश कर रहा था और शायद उसकी बीवी के रोने का राज भी यहाँ ही पोशीदा था। मैंने फैसला किया कि पता चलाऊंगा कि वजह क्या थी। जब सर हेनरी से बात की तो वो हैरान ना हुए बल्कि कहने लगे कि मैं जानता हूं कि वो रात को चलता है, तो हम पता चलाएंगे कि क्या मामला है और उसका पीछा करेंगे। सर हेनरी खुश थे कि कोई काम तो करने के लिए हाथ लगा ताकि बोरियत खत्म हो। सर हेनरी घर की मरम्मत और नए सामान का भी सोच रहे हैं और शायद मिस स्टेपलटन से शादी का भी, क्योंकि वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मगर कुछ मुश्किलात इसमें ज़रूर हैं। हुआ कुछ यूं कि वो अकेले बाहर जाना चाहते थे। मैंने साथ चलने पर इसरार किया कि अकेले जाने से उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं क्यों। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कहीं वो मारे ना जाएं, तो मैं उनके पीछे गया, मगर शायद रास्ता भूल गया और एक बुलंद जगह से चारों तरफ देखा। सर हेनरी नज़र आए मगर एक औरत के साथ। मैं परेशान था कि क्या करूं। उनके पास जाता तो वो नाराज़ होते और ना जाता तो उनकी जान को ख़तरा था। मैं इतनी दूर था कि उनकी मदद को पहुंच ना सकता था। अचानक मैंने महसूस किया कि एक और शख्स भी वहां मौजूद था, स्टेपलटन। जब उसने उन दोनों को देखा तो पागलों की तरह उनकी तरफ किया और सर हेनरी को बुरा भला कहा। बहन हैरान परेशान खड़ी थी। सर हेनरी ने बात बनाने की कोशिश की मगर स्टेपलटन का गुस्सा देख कर शर्मिंदगी से वापस आने लगे। मुझे शर्मिंदगी थी कि ये सब कुछ देखा। मैं उनसे मिला, पहले मुझे देखकर उसे गुस्सा चढ़ा मगर मुझे दोस्त देखा तो गुस्सा दूर हो गया। वॉटसन, मुझ में क्या बुराई है कि स्टेपलटन ने इस कदर गुस्सा किया? क्या मैं उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता? इस कदर गुस्से की वजह मेरी समझ से बालातर है। स्टेपलटन ने तो हद ही कर दी है। उसकी बहन मुझे पसंद करती है, मैं उसे, मगर स्टेपलटन उस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मिस स्टेपलटन ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मगर मैंने कहा कि अगर वो मेरे साथ चले तो फिर जाऊँगा, यानी मुझसे शादी करे। अगर स्टेपलटन उसका भाई ना होता तो मैं न जाने उसका क्या हशर कर चुका होता। बदतमीज़, जला हुआ इंसान, मगर आज मैंने उसकी अच्छी खासी की है। वॉटसन, उसके गुस्से की क्या वजह है? मैंने बात तो बनाई मगर मैं भी इस मसले पर हैरान था। कम उम्र, खूबसूरत, अमीर, शरीफ, सब चीज़ें उसके हक में जाती थीं, मगर स्टेपलटन न जाने क्यों इस शादी के ख़िलाफ़ था। मगर दोपहर को स्टेपलटन खुद आया और अपने रवैये की माफ़ी मांगी। कल वो पागल हो गया था मगर आज अच्छे तरीके से बात की और कहा कि उसकी बहन उसके लिए सब कुछ है और अनमोल है। वो इसके बगैर दुनिया में अकेला है। वो अपने अलावा किसी और को उसके करीब नहीं देख सकता। उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं कम से कम 3 माह उसकी बहन से दूर रहूं तो वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने हाँ कह दी। सर हेनरी ने कहा, खैर तो इस तरह ये मसला तो हल हो गया। एक और अहम बात, मिसिस बैरीमोर के रात को रोने का और बैरीमोर के चलने का था, मुझे मुबारकबाद दो। मैंने ये मसला भी हल कर लिया। ये मसला 2 रातों की मेहनत ने हल किया। मैं और सर हेनरी रात को बैरीमोर का इंतज़ार करते रहे। एक रात को कुछ ना हुआ और दूसरी रात हमारी हालत बिल्कुल वैसे थी जैसे शिकारी बेचैनी और खामोशी से शिकार का इंतज़ार करता है। फिर हमें चलने की आवाज़ आई, हमने उसका पीछा किया। अंधेरे में बैरीमोर चलता हुआ नजर आया, हाथ में मोमबत्ती। वो कुछ कम सुनता था इसलिए हमारा पीछे चलना महसूस ना किया। जब बैरीमोर खिड़की से बाहर देख रहा था तो सर हेनरी उसके पास पहुँच गए और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैरीमोर घबरा गया, मैं देखने आया था कि खिड़कियां बंद हैं या नहीं। अच्छा, दूसरी मंजिल पर यह देखने आए थे? जनाब, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। जनाब, उस सिलसिले में बात ना करें, देखें ये आपसे मुतालका नहीं है। मैंने कुछ सोचा और मोमबत्ती हाथ में पकड़कर खिड़की में गया और समझ गया कि वो मोमबत्ती से किसी को कोई सिग्नल इशारा दे रहा था। मैंने जब मोमबत्ती हिलाई तो दूर से भी हल्की सी रोशनी नजर आई। बैरीमोर बोला, ना ना जनाब, ये कुछ नहीं, सिर्फ आपका वहम है। तुम बदमाश हो और जरूर कोई गहरी साजिश कर रहे हो। जनाब, ये आपसे मुतालका बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, सर हेनरी ने गुस्से में कहा, तुम नौकरी से फारिग हो।
अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर तुम्हारा खानदान 100 साल से यहाँ खिदमत कर रहा है और तुम कैसी गलत हरकत करके जा रहे हो, जिनका खाते उनके खिलाफ ही साजिशें करते हो।
नो नो सर, नॉट अगेंस्ट यू। जनाब, हम आपके खिलाफ साजिश करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
ये औरत की आवाज़ थी।
लाइजा, हम अब यहाँ नहीं ठहर सकते, अभी अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ओ जॉन जॉन, ऐसे मत कहो। सर हेनरी, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसमें मेरे शोहर का कोई कसूर नहीं। मेरा भाई बेआबाद ज़मीनों में भूखा हो तो मैं उसे अपने घर के सामने कैसे मरने दूँ? मोमबत्ती से इशारा किया जा रहा था कि उसके लिए खाना तैयार है, उसने बताया कि वो कहाँ है। मेरा भाई वही मुजरिम है जो जेल से फरार हुआ है। बैरीमोर ने कहा, जनाब ये सच है और इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। तो ये ना ख्याल करें कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। हम हैरान थे कि ये तो इज्जतदार लोग हैं और उनका भाई इस कदर खतरनाक मुजरिम। जनाब, वो मेरा छोटा भाई है, मगर बिगड़ गया और जराइम की दुनिया में कदम रख दिया। फिर किस्मत से जेल से फरार हुआ, मगर मेरे लिए तो आज भी वो छोटा सा बच्चा है जिसके साथ मैं खेलती थी और उसका ख्याल रखती थी। और इसीलिए वो जेल से भी फरार हुआ क्योंकि उसे मालूम था कि मैं यहाँ रहती हूँ और उसकी मदद करूँगी। वो परेशान हाल यहाँ आया तो हमने उसकी मदद की और फिर आप आ गए तो वो बेआबाद ज़मीनों पर चला गया। मोमबत्ती के इशारे से हमें इल्म हो जाता है कि वो कहाँ है और मेरा शोहर उसे रोटी पानी दे आता है। जब तक उसका इशारा मिलता रहेगा हम उसे खाना भेजते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे, ये सच है।
उसकी आवाज़ से मालूम हो रहा था कि औरत सच कह रही है। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थीं और दूर से अभी भी हल्की हल्की रोशनी हिलती नजर आती थी। ये 1 मील दूर होगा। वॉटसन, आओ उसे पकड़ें। ऐसे मुजरिम से कैसे रियायत की जा सकती है, वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैंने पिस्तौल ले ली और उसे पकड़ने गए। ठंडी हवा चल रही थी, कभी कभी चांद की रोशनी फैल जाती, फिर बारिश शुरू हो गई। दूर से वही आवाज़ आई जिसे आसेबी खौफनाक कुत्ते की कहा जाता था। खौफ से हम दोनों का बुरा हाल था। लोग कहते हैं ये बैस्करविल्स की खौफनाक बला की आवाज़ है, मगर बहुत दूर से आ रही है। हम बच्चे तो नहीं के डर रहे हैं, मगर शायद लोगों की बात दुरुस्त ही ना हो। लंदन में हम इसे मजाक में लेते थे, मगर यहाँ तारीकी और बेआबाद जगह ये चीज़ कितनी ख़तरनाक लगती है। हाँ, मेरे अंकल सर चार्ल्स के करीब से भी कुत्ते के पैर के निशान मिले थे। वॉटसन, मैं डरपोक नहीं, मगर ये बात वाकई मुझे खौफजदा कर रही है। क्या हम वापस चलें?
नहीं, हम मुजरिम को ज़रूर पकड़ेंगे। हम आगे जाने लगे,
न जाने रोशनी कहाँ से आ रही थी। आखिरकार हम मुजरिम के करीब पहुँच गए। मोमबत्ती को पत्थरों में ऐसे रखा गया था कि हवा उसे ना बुझा सके, और बेआबाद ज़मीनों में अकेली रोशनी अजीब पुरिसरार मालूम हो रही थी। अब हम क्या करें, सर हेनरी ने कहा। मुजरिम नजर आया, खतरनाक जानवरों की सी तरह का। उसे शायद इल्म हो चुका था कि कोई ख़तरा है। हम आगे बढ़े और वो हमें बुरा भला कहते हुए एक पत्थर उठाए बढ़ा। फिर चांद की रोशनी गायब हुई और वो भाग गया। हम उसके पीछे भागे, मगर वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। हम थक कर वापस जाने वाले थे कि हमने एक और शख्स का साया देखा। वो मुजरिम नहीं था। उफ, वो ज़रूर उस बेआबाद ज़मीनों का भूत होगा। और फिर वो भी गायब हो गया। सर हेनरी सख्त परेशान थे और वापस जाने के ख्वाहिशमंद। हमने सोचा कि सुबह इस मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तफसीलात थीं। तो शर्लक होम्स, अब आपका काम है कि कोई नतीजा निकालें। शायद अगली रिपोर्ट में कोई ख़ास बात लिख सकूं। मगर क्या ही अच्छा हो कि आप खुद यहाँ आ जाएं ताकि मुआमला हल हो सके। ये बातें तो वो थीं जो मैंने शर्लक होम्स को लिखीं। अब मैं कुछ हिस्से अपनी डायरी के आपको सुनाता हूँ जो मैंने उसी वक्त लिखे थे। बारिश हो रही है, बाहर का मौसम उदास है और घर में भी उदासी और वीरानी दिखाई देती है। मेरी छठी हिस बता रही थी कि यहाँ खतरा है, कुछ होने वाला है, मगर कहाँ से ये खतरा हो सकता है। मैंने कई मरतबा दूर बेआबाद ज़मीनों से आती हुई कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। अगर कुत्ता है तो कहाँ पर छुपा बैठा है, खुराक कहाँ से लेता है।
دن کو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کون تھا جو مجرم کو پکڑنے کے دوران ہمیں رات کی تاریکی میں دکھائی دیا؟ وہ دوست تھا یا دشمن؟ کیا یہی وہ شخص تھا جو سر ہنری کے تعاقب میں لندن تک گیا؟ ناشتے کے بعد بیری مور نے شکایت کی کہ اس کی بیوی کے بھائی کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے کہا کہ وہ مجرم ہے اور سوسائٹی کے لیے خطرہ، بلکہ ہمیں تو پولیس کو اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔ بیری مور نے درخواست کی کہ ایسا نہ کیا جائے، وہ کسی شخص کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، وہ یقین دلاتا ہے۔ دو تین دن میں ہم ساؤتھ امریکہ چلے جائیں گے۔ اس کی بار بار کی درخواست پر سر ہنری نے یقین دلایا کہ وہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ شکریہ، بیری مور نے کہا، وہاں سے جانے لگا مگر پھر واپس آیا۔ آپ نے اتنی شفقت کی ہے کہ سر چارلز کی موت کے بارے میں میں کچھ اور بتانا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ سر چارلز دروازے میں کھڑے ہو کر کسی عورت کا انتظار کر رہے تھے۔ واقعی؟ ہم نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، اور اس عورت کے نام کے شروع میں ایل ایل آتے ہیں۔ یہ اس طرح معلوم ہوا کہ سر چارلز کے کمرے سے ایک جلا ہوا خط ملا تھا جس کا کچھ حصہ پڑھنے کے قابل تھا، جس میں لکھا تھا کہ پڑھنے کے بعد اس خط کو جلا دیں اور رات 10 بجے گیٹ پر مجھ سے ملنے آئیں۔ ایل ایل، مگر تم نے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک تو ہمیں اپنی مشکلات تھیں، دوسرے ہم نہیں چاہتے تھے کہ سر چارلز جیسے اچھے انسان کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ثابت ہوں۔ تمام دن بارش ہوتی رہی، میں پھر بھی بے آباز زمینوں میں اس جگہ گیا جہاں اجنبی رات کی تاریکی میں نظر آیا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ واپسی پر ڈاکٹر مورٹیمر ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، کسی عورت کے متعلق جانتے ہیں جس کے نام سے پہلے ایل ایل آتا ہو؟ ہاں، لورا لائنز ہمسائے میں رہتی ہے۔ وہ غریب عورت ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کل جا کر اس عورت سے ملاقات کروں گا۔ دوسری طرف بیری مور نے بتایا کہ اب وہ رشتہ دار مجرم نظر نہیں آتا۔ میں کھانا رکھ آیا تھا مگر وہ غائب تھا۔ شاید دوسرا آدمی وہ کھانا لے گیا کیونکہ کھانا غائب تھا۔ تو تمہیں علم ہے کہ وہاں دوسرا آدمی بھی ہے؟ ہاں، ایک اور آدمی بھی ہے، میں نے دیکھا نہیں مگر رشتہ دار نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں یہ بات سن کر حیران تھا۔ میں لورا لائن سے ملنے گیا۔ وہ خوبصورت تھی مگر کچھ سختی اس کے چہرے پر ضرور تھی۔ وہ بولی، سر چارلز ہمیشہ میری مدد کرتے تھے، کبھی آپ نے انہیں خط لکھا؟ پہلے اس نے منع کیا، مگر جب میں نے بتایا کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے تو اس نے کہا ہاں، شکریہ کے خط ضرور لکھے تھے اور کافی مرتبہ ان سے ملاقات بھی کی۔ اچھا، تو کبھی یہ بھی لکھا کہ وہ رات کو گیٹ پر ملنے آئیں؟ اب وہ عورت غصے میں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، تو کیا تم نے یہ نہیں لکھا کہ پلیز پلیز آپ اچھے اور معزز انسان ہیں تو اس خط کو جلا دیں اور 10 بجے دروازے پر ملیں؟ یہ سن کر عورت کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ سخت گھبرا چکی تھی۔ دیکھیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اچھا، تو پھر میں پولیس کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، میری زندگی بہت سخت ہے، مشکلات میں گھری ہوئی ہوں۔ محبت کی شادی کی وجہ سے ماں باپ مجھے چھوڑ چکے ہیں اور شوہر سے طلاق ایک بڑی رقم کے بغیر ممکن نہیں۔ میں نے سوچا سر چارلز کو یہ باتیں بتاؤں، چنانچہ وہ خط لکھا، مگر معلوم ہوا کہ اگلے دن وہ لندن جا رہے ہیں تو رات کو ملنے کی درخواست کی، مگر میں وہاں گئی نہیں تھی۔ آخری وقت میں ایک دوسرے آدمی نے میری مدد کی۔ میں صبح انہیں یہ باتیں لکھنے والی تھی مگر ان کی موت کی خبر ملی۔ اس کی باتیں سچ لگ رہی تھی مگر وہ کچھ ضرور چھپا رہی تھی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ اس اجنبی کو تلاش کروں۔ وہاں گیا مگر ایک لڑکا نظر آیا۔ میں اس کے قریب گیا مگر وہ گم ہو چکا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا اور ادھر ادھر اسے تلاش کر رہا تھا، ہاتھ میں پستول۔ ایک غار میں لگتا تھا کہ کوئی رہتا ہے۔ وہاں کھانے کی چیزیں تھیں اور لکھا تھا، ڈاکٹر واٹسن مس لائنز سے ملنے گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کون رہتا ہے؟ میں وہاں بیٹھ گیا اور پھر کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے پستول تیار کر لی۔ پھر ایک جانی پہچانی آواز آئی، ڈاکٹر واٹسن، باہر کا موسم بہت اچھا ہے، باہر آ جائیں۔ میں پریشان بیٹھا تھا، یہ تو ہومز کی آواز تھی۔ ہومز، ہومز، آپ یہاں ہیں؟ شاندار، دل خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کر۔ آپ کیسے یہاں پر؟ کیسے پتا چلا میں اندر ہوں؟ میرے قدموں کے نشان سے؟ نہیں، تمہاری سگریٹ سے جو تم باہر پھینک کر اندر گئے تھے۔ مگر تم نے یہ جگہ کیسے تلاش کی؟ ہومز نے پوچھا۔ ایک لڑکا کھانا لے کر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے کھانا لے کر آتا ہے، مگر تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہاں ہو؟ نہ نہ واٹسن، غصہ نہ کریں، آپ نے تو اپنی رپورٹر سے میری بہت مدد کی۔ میں جانتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، یہ ضروری تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں یہاں ہوں۔ خاموشی سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی اور جان بھی چکا ہوں، مجرم ایک دو دن میں ہاتھ آنے والا ہے۔ ہم اس غار میں گئے اور گرم بستر کے اندر گھس گئے۔ मैंने मिस लॉरा लाइंस के बारे में बताया तो शर्लक होम्स बोला, वो स्टेपलटन की बहुत करीबी दोस्त है और उनके दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। स्टेपलटन ने आखिरी वक्त में उसे रकम भेजी थी, मगर क्यों? इसलिए कि वो सर चार्ल्स से रात को मिलने ना जाए और वो अकेले रह जाए। इस गार के अंधेरे में होम्स ने मुझे बताया कि उसने क्या क्या मालूम किया। तुमने बताया स्टेपलटन स्कूल में पढ़ाता रहा, तो मैंने इंक्वायरी की, वो वहां से चोरी करके भागा था। मिस स्टेपलटन उसकी बहन नहीं बीवी है, तो फिर वो सर हेनरी से शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? वो इसलिए कि अपने प्लान को अमली जामा पहना सके। तो फिर वो ही लंदन में हमें नजर आया होगा, तो मिस लॉरा लाइंस का क्या बनेगा? अब मैं जान चुका था कि स्टेपलटन कितना खतरनाक मुजरिम है, कितना मासूम नजर आता है मगर अंदर से शैतान। बस एक दो रोज में सब मामला हल हो जाएगा, मगर सर हेनरी की मदद करनी है। उसी वक्त एक भयानक चीख की आवाज सुनकर हम बाहर भागे। बाहर रात के अंधेरे में हम खौफजदा अंदाज में एक लाश के करीब थे। माचिस की रोशनी में सर हेनरी की लाश नजर आई। अफसोस, मुझे पहले कुछ करना चाहिए था। वॉटसन, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर होम्स ने खुशी का नारा लगाया। होम्स, क्या हुआ? ये देखो, ये सर हेनरी नहीं, मुजरिम है। शायद बैरीमोर ने उसे सर हेनरी का सूट दिया था जो उसने पहना हुआ है, ताकि वो इन कपड़ों को पहनकर फरार हो सके। मगर वो कैसे मरा? बैस्करविल्स के दरिंदे ने उसे मारा। तो फिर वो खौफनाक कुत्ता करीब ही होगा। हमने उसके गुर्राने की आवाज सुनी थी, मगर ये मुजरिम इतना खौफजदा क्यों हो गया था? और कुत्ते ने उसे क्यों मारा? होम्स बोला, इस वक्त स्टेपलटन के खिलाफ वाज़े सबूत नहीं, इसलिए गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। फिर स्टेपलटन वहां आता नजर आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उफ, ये कौन है? सर हेनरी? नहीं, ये मुजरिम है, उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा। मैंने चीख सुनी और यहाँ चला आया। अच्छा, तो आप यकीनन मिस्टर होम्स हैं, तो आप जरूर बता सकते हैं कि ये किस तरह मरा। मगर होम्स ने ये जवाब दिया कि वो कल लंदन जा रहा है, यहाँ पर मजीद कोई काम नहीं। खुदा हाफिज मिस्टर स्टेपलटन। वापसी पर होम्स ने कहा, शैतान, कितनी अच्छी तरह ये छुपा गया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सर हेनरी नहीं मरे बल्कि दूसरा आदमी मारा गया। होम्स, आप लंदन जा रहे हैं, ना जाएं, यहाँ खतरा है, और इस स्टेपलटन को गिरफ्तार करें। कोई फायदा नहीं, सबूत हमारे पास नहीं है। सर चार्ल्स की और हेनरी की मौत का वो क्यों ख्वाहिशमंद है? कुत्ता कहाँ है? इंतजार करो। सर हेनरी होम्स से मिलकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें मुजरिम की मौत का बताया। मिसिस बैरीमोर उसकी मौत पर बहुत रोई। उसके लिए वो मुजरिम नहीं, उसका छोटा प्यारा भाई था। सर हेनरी को स्टेपलटन की तरफ से दावतनामा मिला था। अगर आपने मुझे अकेले जाने से मना ना किया होता तो मैं दावत के मजे उड़ा रहा होता। वाह वाह, हाँ, शानदार, यकीनन। हमने कुत्ते के बारे में बातें की। होम्स बोला, इस असेबी कुत्ते के बारे में मैं जल्द ही सब कुछ जान लूंगा। अब आप इस तरह करें कि सर हेनरी, आप... वो रुक गया। शानदार, कितनी जबरदस्त तस्वीर है वो। होम्स ने एक तस्वीर को देखा। ये 17वीं सदी की है, मगर ये शख्स कौन है? यही तो तमाम फिसाद की जड़ है, ह्यूगो, शैतान ह्यूगो। 1647 इस तस्वीर के पीछे लिखी गई है, मगर ये तो अच्छा इंसान लगता है। जब रात को सर हेनरी सोने चले गए तो होम्स ने गौर से तस्वीर को देखना शुरू किया। ठहरो, मेरे खुदा, ये तो बिल्कुल स्टेपलटन लगता है, मैं चिल्लाया, कितनी मुशाबहत है। मैं ये देख चुका था कि तस्वीर स्टेपलटन से कितनी मुशाबहत रखती थी। अच्छा, तो वो इस खानदान का फर्द है जो इस जायदाद को लेना चाहता है। तुम जल्द ही मेरे हाथों बेनकाब होंगे स्टेपलटन, होम्स ने कहा। दूसरे दिन होम्स ने सर हेनरी से कहा, वॉटसन और मैं आज जरूरी काम से लंदन जाएंगे। सर हेनरी घबरा गए। नहीं, आप यहाँ रहें मेरे पास। नहीं, लंदन जाना जरूरी है, मगर आप स्टेपलटन के पास दावत में जरूर जाएं और बताएं कि अगर जरूरी काम ना होता तो हम भी जरूर आते। और हाँ, बेआबाद जमीनों से गुजर कर जाएंगे आप पैदल, वजह नहीं पूछनी, आपको कुछ नहीं होगा। होम्स और मैं लंदन रवाना हो गए। स्टेशन पर एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। होम्स ने उसे कहा कि ट्रेन में लंदन जाओ और मेरी तरफ से ये टेलीग्राम वहां से सर हेनरी को भेजो कि अगर उन्हें मेरी पॉकेट बुक गिरी हुई मिले तो उसे फौरन बेकर स्ट्रीट लंदन भेज दें। होम्स ने उस लड़के को लंदन भिजवाया और मुझे लेकर मिस लॉरा लाइन के पास पहुंच गई। यानी स्टेपलटन को ये पता चलेगा कि हम लंदन में हैं, जबकि हम यहाँ पर ही मौजूद होंगे। सर हेनरी उसे टेलीग्राम के बारे में बताएंगे। हम मिस लॉरा लाइन के पास पहुंच गए। तो आपने कुछ छुपाया है? क्या छुपाया है? मेरा ख्याल है स्टेपलटन और उसकी बीवी ने ये कत्ल किया है।
लॉरेलाइन गुस्से में खड़ी हो गई। उसकी बीवी? अगर ये सच है कि वो शादीशुदा है तो मैं आपसे मुकम्मल तावुन करूंगी, बहुत कुछ बताऊंगी।
अच्छा ये देखें, ये उसकी बीवी की तस्वीर है।
झूठा, मुझे कहता था तलाक ले लूं और उससे शादी कर लूं,
मगर मैं सर चार्ल्स को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती।
होम्स ने कहा, स्टेपलटन ने तुम्हें कहा कि रात को मिलने का खत लिखो,
फिर तुम्हें कहा कि वो रकम दे देगा, वहां ना जाओ।
हाँ ये बिल्कुल सच है, उसने मुझे डराया कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताऊं वरना मैं भी फंस जाऊंगी। मैं उससे मोहब्बत करती थी मगर अब नफरत। हम वहां से वापस आ गए। शाम को हम बेआबाज जमीनों पर मौजूद थे और पुलिस इंस्पेक्टर जो लंदन से आया था हमारे साथ था, उसने पिस्तौल तैयार रखी थी। हम छुपे हुए बैठे थे और दूर स्टेपलटन के घर की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। वो सर हेनरी के साथ बैठा था, खाना रखा हुआ था। कुछ देर बाद स्टेपलटन वहां से निकला और एक दूसरे घर में गया। वहां से अजीब आवाजें आईं, फिर वो वापस अपने घर आ गया।
मगर उसकी बहन या बीवी कहाँ थी? घर में नजर क्यों नहीं आई?
मगर होम्स परेशान था कि रात की धुंध की वजह से जल्द ही नजर आना बंद हो जाएगा। काश वो जल्दी आ जाए, वरना सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। फिर सर हेनरी बाहर निकला, हमारे पास से गुजरने लगा तो एक बहुत बड़ा भयानक काले रंग का कुत्ता उस पर हमला करने निकला, जिसकी आंखों से आग निकलती महसूस हो रही थी। किस कदर दहशत करने वाला मंजर था। हम अपने हवास खो चुके थे मगर उस पर फायर किया। वो जख्मी हुआ मगर भागता रहा। सर हेनरी नजर आए, जो शायद हवास खो चुके थे और चीख रहे थे। कुत्ता गुर्रा रहा था।
होम्स ने 5 फायर कुत्ते पर किए जो मर गया।
मेरे खुदा ये क्या चीज है, मैं बोला, जो कुछ भी है मर चुका है। मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा तो वहां फास्फोरस मली हुई थी जिससे अंधेरे में चमक पैदा होती थी। सर हेनरी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसकी जान बचाई। हम मुजरिम को पकड़ने गए जहां एक कमरे में मिसेस स्टेपलटन बंधी हुई नजर आई। वो होश में आई तो बोली, वो भाग चुका है या पकड़ा जा चुका है?
सर हेनरी तो ठीक है ना?
बदमाश स्टेपलटन मुझे इस्तेमाल करता रहा।
कुत्ता जहां वो बंद करता था मुझे इल्म है,
वो वहां पर ही होगा। डॉक्टर मॉर्टिमर आ गए। उन्होंने सर हेनरी का इलाज किया जो कुत्ते के हमले की वजह से बहुत खौफजदा थे। दूसरे दिन हम मिसिस स्टेपलटन के साथ स्टेपलटन की तलाश में गए। रास्ते में सर हेनरी का वो बूट मिला जो लंदन के होटल में चुराया गया था। ये कुत्ते को सुंघाकर उसे शिकार का बताया गया था, मगर वो हमें अपनी मतलूबा जगह या कहीं और ना मिला। यकीनन रात की धुंध में वो किसी दलदल में फंसकर अपनी जान खो बैठा था।
मगर हमें कुत्ते को बांधने की जगह मिली। वहां कुत्ते को रखा गया था मगर उसके भौंकने की आवाज सबको जाती थी।
सर चार्ल्स को ये कुत्ता नजर आया होगा तो वो घबरा कर भागे और दिल के मरीज होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे।
सर हेनरी की इस वाके के कुछ दिन बाद तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने मॉर्टिमर के साथ तवील सफर करने का फैसला किया ताकि दिल बहल सके, मगर पहले हमारे पास आए और पूछा कि कुछ बातें जो वाजा नहीं उन्हें बताई जाएं।
दरअसल स्टेपलटन सर चार्ल्स के छोटे भाई रॉजर का बेटा था, खानदान की बदनामी का बाइस।
वो साउथ अमेरिका गया, वहां शादी की और चोरी करके भागा और लंदन आ गया।
स्कूल टीचर बन गया और नाम तब्दील कर लिया। फिर बैस्करविल्स एक नए नाम से आ गया,
मगर उसे मालूम था कि 2 आदमी खत्म करके उसके पास तमाम जायदाद आ सकती थी।
सर चार्ल्स ने उसे ह्यूगो की कहानी सुनाई तो उसने प्लान बनाया कि सबसे बड़ा और खतरनाक कुत्ता पालकर उसे बेआबाद जमीनों में छुपा दे। बीवी ने उसकी ज्यादा मदद करने से इनकार कर दिया तो मिस लॉरेलाइन को अपने प्लान का हिस्सा बनाया और फिर उसके जरिए सर चार्ल्स को रात को बुलाया और फास्फोरस से खतरनाक नजर आता कुत्ता जिससे शोले निकल रहे थे सर चार्ल्स की मौत का सबब बन गया। स्टेपलटन ने कुत्ते को फिर अपनी जगह पर छुपा दिया। मॉर्टिमर ने कुत्ते के पंजों के निशान देखे और किसी ने स्टेपलटन पर शक ना किया।
फिर सर हेनरी के आने पर उनका ताकुब किया। लंदन में झूठी दाढ़ी पहन ली।
बीवी को कुछ कुछ इल्म था और उसने खत लेकर सर हेनरी को वहां आने से मना किया, मगर अपनी तहरीर में खत ना लिखा। फिर मुलाजिम को रिश्वत देकर होटल से जूता चोरी किया गया। पहला नया जूता था तो कुत्ता उसकी खुशबू ना सूंघ सकता था, इसलिए दूसरा जूता भी चोरी करना पड़ा, जिससे मैं समझ गया कि ये कुत्ते को सुंघाने के लिए ही गायब किए जा रहे हैं। जब स्टेपलटन को मालूम हुआ कि मैं शर्लक होम्स दरमियान में आ चुका हूँ तो वो लंदन को छोड़कर डेवेंचर चला गया कि वहाँ सर हेनरी को ख़त्म करेगा।
मैंने अपने खामोशी से डेवेंचर जाने का इसलिए मंसूबा बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि तमाम हमसायों के मुतालिक अच्छी तरह जान जाऊँ।
हवेली में रहकर यह मुमकिन ना था, तो मैं खामोशी से बेआबाज जमीनों पर गार में रहता रहा। लड़का मेरे साथ आया और मुझे खाना पहुंचाता रहा। मैंने स्टैपलटन के मुतालिक मालूमात हासिल की और उसके बदनाम होने का इल्म हो गया। आखिर में सर हेनरी को कहा कि वो अकेले दावत में जाएं ताकि मुजरिम को उन्हें ख़त्म करने का मौका मिले और हम उसे रंगे हाथों पकड़ें। मिस स्टैपलटन अच्छी औरत है, पहले मोहब्बत ज़रूर करती थी मगर फिर खौफजदा हुई और उसके कामों में शरीक होने से इनकार कर दिया और आखिर में उसके खिलाफ हो गई। चुनाचे स्टैपलटन ने उसे मारा और बांध दिया कि सर हेनरी की मदद ना कर सके, मगर उसने बार बार सर हेनरी को इस बारे में खबरदार करने की कोशिश की। एक तरफ मुजरिम के मारे जाने का उसे इल्म हुआ और दूसरी तरफ जलती पर तेल का काम मिस लॉरा लाइन से ताल्लुकात ने किया। चुनाचे मोहब्बत नफरत में बदल गई। स्टैपलटन को इल्म था कि तमाम इलाका यही समझेगा कि ये उस अस्से भी कुत्ते का काम है। उसे तमाम जायदाद मिल जाएगी तो वो अपनी बीवी को जुबान बंद करने पर मजबूर कर देगा। तो डॉक्टर वॉटसन, ये तमाम बातें थी जो मैंने आपको बताई। कुत्ता भूखा भी होता था और ख़तरनाक भी लगता था, जो मौत का सबब बनता।
मगर होम्स, स्टैपलटन जायदाद में हिस्सेदार बनने का किस तरह कह सकता था? वो कैसे कहता कि किसी दूसरे नाम से रह रहा था और असल में बैस्करविल्स खानदान का फर्द है?
होम्स मुस्कुराया। देखें, जो हाल में हुआ और जो माजी में हुआ उसकी तह तक मैं पहुंच गया। मुस्तकबिल में स्टैपलटन या बैस्करविल्स किस तरह जायदाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश करता, ये मैं बताने से गुरेज करूँगा।
हाँ, इस सिलसिले में वो ये तरीका इख्तियार कर सकता था कि साउथ अमेरिका, जहाँ वो पहले रहता था, वहाँ जाकर जायदाद से मुतालिक अपने हक का दावेदार बनता और कभी भी यहाँ आए बगैर जायदाद हासिल कर लेता,
या लंदन में आकर कुछ अरसे के लिए दोबारा नया भेद बदल कर जायदाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश करता और कागजात से ये साबित कर देता कि अब वो जायदाद उसकी मलकियत है।
वॉटसन, बहुत काम हो गया, अब कुछ अरसा हमें तफरीह करनी चाहिए।
तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com